ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बीआरआई समझौते में कर्ज लेने के विषय का कहीं उल्लेख नहीं है, पर राष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने किया साफ, न्यायालय को गरिमामय बनाने का प्रयास हो रहा है। प्रधान न्यायाधीश राउत का कथन, फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए नया आईन लाने के उद्देश्य से मंत्रालय काम कर रहा है। संचार मंत्री गुरुंग का कथन और सत्तारूढ़ दल के बहिष्कार के बाद दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ विफल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। प्रोस्टेट संबंधी शल्य क्रिया के बाद आज पूरा कर आज दोपहर राष्ट्रपति पौड़ेल डिस्चार्ज हुए। इस बीच राष्ट्रपति पौड़ेल ने अपने इलाज में शामिल चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों समेत स्वदेश और विदेशों से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले सभी के प्रति आभार जताया। बता दें कि बीते बुधवार को राष्ट्रपति का प्रोस्टेट संबंधी ऑपरेशन हुआ था। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच हाल ही में संपन्न बीआरआई समझौते में कर्ज लेने के विषय का कहीं उल्लेख नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सुनवाई में नेपाल की ओर से धारणा रखने के लिए नीदरलैंड प्रस्थान करने से पहले आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर मंत्री डॉ राणा ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और चीन के बीच हुए बीआरआई समझौते का गहरा अध्ययन किए बिना ही हल्के तौर पर टिक्का टिप्पणी हो रही है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि बीआरआई समझौते के अंतर्गत परियोजनाओं को भी दोनों देशों की सहमति से ही आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा कि सभी के अथक प्रयास से न्यायालय एक लय में लौटा है। आज काठमांडू में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरण समारोह में प्रधान न्यायाधीश राउत ने कहा कि अब न्यायालय को गरिमामय बनाने की जरूरत है। उन्होंने न्यायालय को गरिमामय बनाने के अपने प्रयास में साथ देने का वरिष्ठ अधिवक्ताओं से आग्रह किया। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि शिक्षा को सही ढंग से आगे बढ़ाने पर समाज की सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज ललितपुर के जावला खेल में आयोजित शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड की 16वीं वार्षिक साधारण सभा में सभामुख घिमिरे ने कहा कि ज्ञान और चेतना भरने वाले शिक्षक समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नेपाली चलचित्र क्षेत्र के विकास और प्रवर्धन के लिए आईन में आवश्यक सुधार करने में सरकार देर नहीं करेगी। आज काठमांडू में आयोजित 5वीं आईवार्ट नेपाल छोटे चलचित्र प्रतियोगिता में मंत्री गुरुंग ने कहा कि चलचित्र आम लोगों तक पहुंचाने वाला मजबूत माध्यम है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पांडे ने कहा कि सुरक्षित आकाश सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि उड़ान को सुरक्षित बनाने के लिए नियमन निकाय को निरंतर सचेत किया जा रहा है और हवाई दुर्घटना संबंधी अनुसंधान के लिए स्थायी आयोग गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला ने कहा कि सत्ता सहयात्री दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहकार्य जरूरी है। आज नेपाल प्रेस यूनियन द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता डॉक्टर कोइराला ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और सहकार्य एक दूसरे का पूरक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दो बड़े दलों को जोड़कर सरकार बनी है, इसलिए इसे विफल होने की छूट नहीं है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ने कहा कि विश्वव्यापी रूप में भौतिक पूर्वाधार निर्माण करने वाली चीनी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई देश के हित में है। 7 दिनों का चीन दौरा कर आज स्वदेश लौटने के बाद त्रिवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नेता खनाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के भौतिक विकास के लिए बीआरआई परियोजना सहयोगी साबित होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सत्तारूढ़ दल के बहिष्कार के बाद दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया है। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वह अगले शनिवार से साप्ताहिक महाअभियोग वोट आयोजित करेगी। पार्टी यह भी उम्मीद कर रही है कि इस बीच प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी पर दबाव बढ़ेगा। उन्हें मंजिल पार करने के लिए सिर्फ 8 सांसदों की जरूरत है। महाअभियोग पर मतदान से कुछ घंटे पहले यून ने पीछे हटने की पेशकश की, जिससे उनकी पार्टी को देश का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन इससे विपक्ष बमुश्किल शांत हुआ है। सत्तारूढ़ दल की योजना मतदाताओं पर मार्शल ला की चौंकाने वाली शाम से आगे बढ़ने पर निर्भर करती है, जो आज बहुत ही असंभावित प्रतीत होती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीआरआई समझौते में कर्ज लेने के विषय का कहीं उल्लेख नहीं है, परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने किया साफ। न्यायालय को गरिमामय बनाने का प्रयास हो रहा है, प्रधान न्यायाधीश राउत का कथन। फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए नया आईन लाने के उद्देश्य से मंत्रालय काम कर रहा है, संचार मंत्री गुरुंग का कथन। और सत्तारूढ़ दल के बहिष्कार के बाद दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विफल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।